वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और आज हम इस 16वें श्लोक का भाग तीसरा लेंगे। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो हमने हमारे पिछले सेटिंग में मोहिता इस शब्द पर गौर किया था। तो मोह ये शब्द की परिभाषा है वह आसक्ति जो हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए प्रतिकूल हो। तो हमारे अंदर स्वाभाविक भगवान को प्रेम करने की जो एक शक्ति है, एक सुप्त अवस्था में जब वो विकृत स्वरूप ले लेती है, वो जो भगवान के प्रति प्रेम रुचि आसक्ति जब उसका विकृत स्वरूप होता है तो वो है मोह इस भौतिक संसार के प्रति। तो एक रिकैप हम लेंगे हमारे पिछले सेटिंग का। मोह का अर्थ इल्यूजन श्रील प्रभुपाद ने बताया है, और हमने पिछले दफा दो प्रकार के मोह या इल्यूजन की चर्चा की थी। द इल्यूजन ऑफ परसेप्शन, दृष्टि का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंसेप्शन, विचार धारा का भ्रम। और ये 10 प्रकार के इल्यूजन हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं अलग अलग जगहों पर, जिसके वजह से एक जीव बद्ध अवस्था को प्राप्त करता है और बद्ध अवस्था में रहता है। द वर्ल्ड इज मेंट टू प्रोवाइड फॉर माई कोटा ऑफ एंजॉयमेंट, टाइम फैक्टर विल वन डे वर्क इन माई फेवर, माई वे ऑफ एंजॉयमेंट इज द बेस्ट, माई चॉइसेस आर अनमैच्ड, माई डिसीजंस आर अनक्वेश्चन्ड, माइंड एटर्नलाइजेस टाइम इन बोथ पेन एंड प्लेजर, वॉट एवर हैपन्स इज टू हैपन विद इन दिस वन लाइफ ओनली, आई कैन सॉल्व एवरी वन एल्सिस प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन गॉड कांट सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। तो पशु समाज में उनका अधिकांश समय भ्रम होता है उनके दृष्टि को लेकर, परसेप्शनल इल्यूजन। परंतु हम मनुष्य, हम उसके परे जब हमारी विचारधारा से भ्रमित होते हैं, तो विचारधारा से भ्रमित होने के वजह से फिर हमारा जो दृष्टिकोण है, यहां तक कि शारीरिक रूप पर हमारा जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये दो अंग्रेजी के शब्द हैं इल्यूजन के संदर्भ में, यूटोपिया और डिस्टोपिया। इमेजिनिंग दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड प्लेजेंट, इमेजिनिंग दैट एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड अनप्लेजेंट। इसलिए भीष्म पितामह ने श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर महाराज को जब उन्होंने उपदेश दिए तो ये बहुत ही व्यवहारिक उपदेश संदेश उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सिखाया। नथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और हमने इसकी चर्चा करी इसके संदर्भ में, इफ यू टेक एनी ऑब्जेक्ट यू कैनॉट से दैट इट इज एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट एंड यू कैनॉट से इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। सिमिलरली एनी पर्सन प्लेस सिचुएशन, ये सब में खामियां भी हैं और इन सब में कुछ न कुछ गुण भी है, दुर्गुण भी है गुण भी। और फाइनली ये हमारा लास्ट स्लाइड था पिछले सेटिंग का, कि भगवान के संदर्भ में एक जीव भ्रमित होता है इस प्रकार से कि वो भगवान को अपने जीवन में चाहता है, ही वॉन्ट्स द लॉर्ड इन हिज लाइफ, बट हाउ, लाइक दिस, योर पावर एंड माई इंटेलिजेंस, कृष्णा आई कैनॉट बी पावरफुल लाइक यू, आई नीड योर पावर टू एग्जीक्यूट माई प्लान्स, मुझे आपकी योजनाएं नहीं चाहिए, योजना मेरी होनी चाहिए, शक्ति आपकी होनी चाहिए। देखो हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हो रहे हैं इस भौतिक संसार में और हम भगवान को चकमा दे सकते, जबकि ये पूरी सृष्टि, इस पूरी सृष्टि के सारे तत्व, हम स्वयं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब कुछ उनके निर्देशन में है। और ये हमारा सबसे बड़ा मोह है कि हम भगवान को हमारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। This is the biggest illusion a living entity continues to live within this material world. तो अब हम आज का हमारा सत्र प्रारंभ करेंगे। तो फिर से ये जो पंक्ति भगवान ने कही है, कवयोप्यत्र मोहिता, इसे हम लेंगे। तो अब तक हमने चर्चा की कि मोहिता का अर्थ क्या होता है, मोहित होना, मोह में चले जाना, उसका अर्थ क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि बुद्धिमान लोग कैसे मोहित हो जाते हैं और हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, एक के बाद एक कितने सारे स्लाइड्स मुझे बनाने पड़े, उदाहरण पे उदाहरण, किनके, बुद्धिमान जो मोहग्रस्त हो गए उनके उदाहरण, कोई दानव, राक्षस या तथाकथित कोई इस संसार के बुद्धिमान या फिर कोई बद्ध जीव, उनके उदाहरण नहीं लेंगे आज हम, बुद्धिमान लोगों के उदाहरण। इसलिए एक पहले आपको हम डिस्क्लेमर देते हैं या फिर एक सूचना या संकेत या चेतावनी दे देते हैं कि जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिन जिन बुद्धिमान लोगों के उदाहरण हम लेने वाले हैं, कृपया करके उनको हमें किस दृष्टिकोण से देखना है ये समझ लें। इसलिए ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले, और हम जब वो एग्जाम्पल्स समझने लगेंगे तो ये स्लाइड मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये हम फिर से रिपीट करेंगे स्लाइड। तो जब भी हम किसी महानुभाव के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति उनकी देखते हैं या सुनते हैं, जैसे कि बड़े कोई दिग्गज, कोई ऋषि मुनि या कोई महाजन, वो भ्रमित हो गए, वो मोहग्रस्त हो गए, तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक है मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक है दैवी दृष्टिकोण अर्थात डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि मैं पूछूं कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हमारा, मानवीय होना चाहिए या दैवी होना चाहिए? शुड इट बी ह्यूमन, शुड इट बी डिवाइन? कितने हैं जो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू इसके मत के हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, कितने हैं जो डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उसके मत के हैं? दैवी। कई तो हाथ ही नहीं ऊपर कर रहे हैं। कोई मत नहीं, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। देर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड देर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइन। यदि केवल मानवीय स्तर पर हम देखेंगे ऐसे उदाहरण को या समझने की कोशिश करेंगे ऐसे उदाहरणों को, तो हम क्या करेंगे? अपराध कर बैठेंगे कि अरे देवराज इंद्र वो भी ऐसे निकले, ब्रह्मा जी वो भी ऐसे, तो हम लोग अपराध करने लगेंगे कि फिर उनमें और हम में क्या अंतर है। मानवीय स्तर पर कैसे देखा जाता है? अरे यदि वो लोग ये सब कर रहे हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, हाँ इतनी सारी उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो फिर हम में हर्ज क्या? अपराध मानवीय स्तर पर। और अगर दूसरा एक्सट्रीम है कि नहीं नहीं नहीं, वो जो भी कुछ करें वो सब कुछ दैवी है, उसके अंदर मानवीय कुछ हो ही नहीं सकता, वो सब कुछ लीला है, तो हम मानवीय शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाएंगे फिर। वी वॉन्ट बी एबल टू लर्न ह्यूमन लेसन्स। सो बिफोर वी गो थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ बिग एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज अपियरिंग टू बी इल्यूजन्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द डिवाइन व्यू पॉइंट। रेडी? तो सबसे पहला उदाहरण युधिष्ठिर महाराज, जो कि धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, परंतु युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज ने भी जुआ खेला। अच्छा, इसके पीछे इतिहास भी है कि महाभारत के युद्ध के पहले व्यासदेव पांडवों से मिले, और व्यासदेव जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, तो व्यासदेव जी ने भविष्य को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज की ओर अपनी नजर घुमाते हुए कहा कि युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए अब एक ऐसा युद्ध होने वाला है जिसके अंदर 64 करोड़ योद्धा मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, और ऐसे शव जिनका सर धड़ से अलग हो गया है इन नदियों में तैरते हुए दिखाई देंगे। ऐसा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया महाभारत के युद्ध का। युधिष्ठिर महाराज ने जब यह सुना, मुझे राजा बनाने के लिए यह सब कुछ होने वाला है, तो युधिष्ठिर महाराज ने वहीं पर एक संकल्प ले लिया। संकल्प यह लिया कि जो भी मेरे जो आदरणीय पूजनीय हैं, मेरे जो बुजुर्ग, मेरे अग्रज हैं, वो मुझे जो कुछ आदेश दें, मैं कभी उन आदेशों का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उन्हें लगा कि ये संकल्प लेने से शायद हो सकता है कि युद्ध टल जाए। अब ये संकल्प युधिष्ठिर महाराज ने लिया है, धर्मराज हैं वो, और उस युग में जब भी कोई इस प्रकार के प्रण लेता था उसे निभाता था, है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा नहीं कि बाद में फिर वो बोल देते मैंने लिया था, तो लिया होगा। हाँ, वो समय अलग था, परिस्थिति अलग थी, लिया होगा मैंने, मैं नहीं पालन करता, कर लो क्या करोगे, आजकल लोग ऐसे बोल देते। परंतु उस जमाने में यदि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रण लिया है तो प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए शकुनी इत्यादि वो जानते थे कि ये युधिष्ठिर महाराज ने तो प्रण ले लिया है, चलो अब इसका फायदा उठाया जाए। कैसे? जुए के लिए बुलाओ, मनानी चौक कौन बुलाएगा? धृतराष्ट्र बुलाएंगे। तो बुजुर्ग हैं और युधिष्ठिर कभी इस न्योते को अस्वीकार नहीं करेंगे। परंतु फिर भी युधिष्ठिर महाराज के ऊपर ये एक लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने जुआ खेला भी कैसे, और खेला तो खेला, दांव पर किसको लगाया? अपने भाइयों को, अपनी बीवी को दांव पर लगा दिया। तो इसलिए यहां पर ये पहला उदाहरण है कि ऐसे बुद्धिमान वो भी भ्रमित हुए। फिर अर्जुन जैसे विद्वान भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन जो भ्रमित हुए हैं, और न केवल भ्रमित हुए हैं बल्कि भगवान के सामने तर्क रख रहे हैं कि मेरे अनुसार इतने सारे बाकी वहां पर अर्जुन के वरिष्ठ मौजूद हैं, परंतु अर्जुन वहां पर जो तर्क रख रहे हैं कि मेरे अनुसार ये युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहिए, ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मेरा मत है। तो अर्जुन जैसे विद्वान भी भ्रमित हुए। भागवत में अजामिल का उदाहरण है कि अजामिल के विषय में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अजामिल ने उस वैश्या से विवाह किया और इतने कुकर्म में अजामिल लगा कि यमदूतों को आना पड़ा, विशेष रूप से 3 यमदूत खास केवल अजामिल के लिए वो आए यमलोक से। परंतु अजामिल के पतन होने के पहले का जीवन भी वर्णित है श्रीमद् भागवत में। अयम ही श्रुत संपन्न शील गुणालय, ऐसे ऐसे उसके गुण बताए गए हैं कि इतना वो सुशील था, इतना वो गुण संपन्न था, ऐसा वो ब्राह्मण था, वेद में पारंगत था, ये सारे गुण बताए गए। तब फिर ये प्रश्न फिर से उठता है कि यदि अजामिल वो इतना बुद्धिमान था, यदि अजामिल वो इतना सुशील था, वो इतना वेदों में पारंगत था, फिर अजामिल कैसे मोहग्रस्त हुआ? कवयोप्यत्र मोहिता। अब जब अजामिल को यमदूत लेने आए, उस समय हम ये कथा जानते हैं कि अजामिल ने नारायण अपने पुत्र को पुकारा, भगवान नारायण को नहीं, परंतु अपने पुत्र का नाम जो नारायण रखा था, अपने पुत्र को पुकारा, और 4 विष्णुदूत वहां पर प्रकट हुए। अब वार्तालाप चल रहा है यमदूत और विष्णुदूत में, बीच में अजामिल लेटा हुआ है, दोनों को देख रहा है, एक तरफ यमदूत एक तरफ विष्णुदूत, और दोनों का वाद विवाद चल रहा है। किनका? दोनों पार्टियों का, यमदूत और विष्णुदूत दोनों पार्टियों का वाद विवाद चल रहा है कि इसे कहां जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी स्थिति में है, मरण शैया पर लेटा हुआ है, अब डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि यम यातना भोगेगा या वैकुंठ वास मिलेगा। बोलो, ऐसा डिसीजन, और दोनों के पलड़े भारी हैं। यमदूत जो हैं वो ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं यमराज का प्रतिनिधित्व करते हुए, और यहां पर विष्णुदूत वो कोई कम है क्या? विष्णु के दूत हैं वो, अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसे विवाद में, इन दोनों के विवाद में जो यमदूत वो भ्रमित होने लगे कि हमें आज दिन तक हमारे जो आराध्य यमराज जी, उन्होंने आज दिन तक हमें ये नहीं बताया कि जब कोई भगवान विष्णु या नारायण का नाम अंत समय ले लेता है तो उसके जितने पाप उसने किए हों अपने जीवन काल में वो सारे साफ हो सकते हैं। ये तो हमने पहले कभी सुना नहीं, हमारी कोई क्लास ऐसी हुई नहीं। इसलिए बंबई का एक विद्यार्थी, उसने एक दफे हमारे एक प्रचारक से कहा, मेरा हीरो अजामिल है। जब पूछा गया क्यों, मजा भी किया और उसे भगवत धाम भी मिला। लाइफ हो तो ऐसी कि उसने मजा भी किया और उसे भगवत धाम भी मिला। परंतु मुख्य मुद्दा यहां पर यह है कि यमदूत जो हैं वो केवल भयावह दिखने वाले ऐसे क्रूर व्यक्ति नहीं है। यमदूत उनकी क्लास होती है, यमराज उनको सिखाते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कुकर्मी होते हैं वो किस प्रकार से कुकर्म करते हैं और कैसे उनका विश्लेषण करना है, कैसे उन्हें पकड़ कर लाना है, कौन से नरक में उनको यातना भुगतनी होगी, सब कुछ उनको डिटेल में बताया जाता है सही गलत का। परंतु यहां पर ये एक्सेप्शनल केस कि हम ले जाने आए और जो हमको रोकने आए हैं यमदूत उनसे प्रभावित थे। इतने सुंदर दिखने वाले व्यक्ति हमने आज दिन तक नहीं देखे क्योंकि वो लोग काफी बिजी रहते हैं यमदूत। ऑब्वियसली कि इतने सारे बद्ध जीवों उनका लेखा जोखा समझते हुए उनको यहां वहां लेकर आना है तो लोग बहुत बिजी रहते, तो उन्होंने कभी विष्णु दूतों को देखा नहीं था व्यक्तिगत रूप से, अभी पर्सनली देख रहे हैं। तो इतना प्रभावित हुए कि एक तो ये दिखने में इतने सुंदर है, ऊपर से इनकी वाणी जो है वो इतनी मधुर है और इतना कन्विंसिंग तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। हालांकि विष्णुदूत जीते वहां पर, उस विवाद में विष्णुदूत जीते और उन्होंने अजामिल को बचाया और अजामिल से कहा अब तुम्हें बचा तो लिया है, अब जाकर तुम्हें अपने आप को सुधार कर आना है ऊपर, अभी नहीं लेके जा रहे तुम्हें, तुम्हें लग रहा है कि अभी तुमको सीट में बिठा के ले जाएंगे, अभी तुमको केवल इन तीनों से बचाया है। तो यमदूत जब वो हारे गए विष्णुदूत के सामने तो वो गए तुरंत दौड़ते हुए यमराज जी के पास, ये कौन थे और ये कौन से भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे, आपने आज दिन तक हमें उनके बारे में बताया नहीं, बताओ कौन है। यमराज पहली दफा इतने प्रसन्न हुए कि फर्स्ट टाइम आज भागवत कथा सुनाने का मौका मिल रहा है, इतने प्रसन्न हुए क्योंकि उनकी जो क्लासेस वहां पर वो केवल पापियों से रिलेटेड क्लासेस हुआ करती थी, इसलिए यमराज जी को कभी टाइम ही नहीं मिला, वो सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ कभी उनका उस वाला कि कभी गीतामृत क्लास भी ले उनके लिए। तो इसलिए अजामिल को देखते हुए कई बार हम भ्रमित हो सकते हैं जैसे अजामिल भ्रमित हो गया, और अजामिल के उसकी जो चार अक्षर उसने कहे नारायण और उसके वजह से वो जो बचा यमदूत यमलोक जाने से, तो यमदूत जो हैं वो मोहग्रस्त हो गए। इसके पश्चात रामायण से उदाहरण महाराज दशरथ का, उन्होंने अपने जीवन में वो एक जो सबसे बड़ी गलती करी, कौन सी गलती कि कैकेयी को उन्होंने खुली छूट दे दी, जो वरदान तुम्हें मांगना है मांग लो। इसलिए महाराज दशरथ के विषय में मैं कहता हूं महाराज दशरथ की स्थिति क्या थी, और बहुत लोग अपने आप को उस स्थिति में पा लेते हैं बाद में, पहले ओपन ऑफर दे देते हैं मांगो जो मांगा। सो दशरथ महाराज की स्थिति क्या थी, प्रॉमिस इन हेस्ट रिपेंट इन लीजर, कि जल्दबाजी में उसने वचन दे दिए और फिर पश्चाताप करने के लिए जब रामचंद्र जी चले गए तो मरते दम तक पश्चाताप करते रहे। सो प्रॉमिस इन हेस्ट एंड रिपेंट इन लीजर, दिस इज दशरथ महाराज। अब सीता देवी, यही नासिक में यह घटना हुई। देखो सब कुछ सकुशल हो रहा था, अब आखिरी साल था उनके वनवास का, यहां जब सीता हरण हुआ तो 13 साल बीत चुके थे, बस आखिरी साल, 1 साल और बिताना है, 13 साल बिता दिए थे। सीता देवी वो हिरण देखती है, गोल्डन डियर। अब देखो कि ठीक है, देख लिया, अच्छा लगा, बातचीत कर लेते, देखा आपने, देखा, फोटो खींची, अच्छा लगा, हाँ अच्छा, मैंने भी देखा, अच्छा बस ठीक है, बस अपना रोटी खाओ सो जाओ। नहीं, चाहिए मुझे, अभी चाहिए, लेकर आओ उसको। तो उस समय सीता देवी ने जो स्त्री हट दिखाया, जिसके वजह से फिर लक्ष्मण का अपमान हुआ और उनके स्वयं का अपहरण हुआ, तो ये सीता देवी के मानवीय स्तर पर एक गलती देखी जाती है। फिर लक्ष्मण की गलतफहमी भरत को लेकर, चित्रकूट में भरत पूरी अयोध्या की सेना को, सारे अयोध्या वासियों को लेकर आ रहे हैं, लक्ष्मण पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं, क्या तुरंत क्या निष्कर्ष पर आते हैं कि ये अब यहां तक पहुंच चुका है, बाज नहीं आएगा, ये भरत युद्ध हमारे पर चढ़ाई कर रहा है। तो लक्ष्मण, इनकी गलत फहमी, और उसके वजह से, क्योंकि लक्ष्मण भरत को लेकर कुछ दुर्विचार रख रहे थे, इसलिए लक्ष्मण को जो सुनना पड़ा सीता देवी के मुख से, क्या सुनना पड़ा, जब लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने कहा था कि सुरक्षा में रखना सीता को, मैं आ रहा हूं उस हिरण को लेकर, और छोड़ना मत ये जगह यहां से, और सीता देवी वो कह रही हैं, जब उन्होंने आवाज सुनी, हालांकि वो रामचंद्र जी की आवाज नहीं थी, परंतु उस मारीच राक्षस की आवाज थी, और लक्ष्मण वो समझ गए कि ये रामचंद्र जी हो ही नहीं सकते, परंतु सीता, उन्होंने जो अपशब्द कहे लक्ष्मण को, अब मैं समझी कि तुम इस स्थिति के ताक में थे कि कब तुम एकांत में मेरे साथ रहोगे। तो लक्ष्मण को ये शब्द क्यों सुनने पड़े, क्योंकि लक्ष्मण ने भरत को लेकर जो अपशब्द कहे थे, इसलिए उन्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा। और आगे चलकर सीता को अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ा, क्योंकि सीता ने लक्ष्मण को ऐसे शब्द कहे। तो ये सब मानवीय स्तर पर भगवान अपने लीला द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें हर एक कदम पर चौकन्ना रहना है। अब अगला उदाहरण, भीष्म पितामह, जो कि एक महाजन हैं, पूजनीय हैं, आराध्य हैं, परंतु उन्हें भी बाणों की शैया मिली। क्यों? क्योंकि उस असत सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने जाने वाला था, उस असत सभा में भीष्म पितामह शांत रहे, और जब भीष्म पितामह के समक्ष द्रौपदी गई रोते बिलखते हुए, सुरक्षा मांगते हुए, सहायता मांगते हुए, भीष्म पितामह, उन्होंने कहा, मैं यहां पर निर्णय नहीं ले सकता क्या सही है क्या गलत है, और उसके वजह से भीष्म पितामह, उन्हें बाणों की शैया प्राप्त हुई। महाराज परीक्षित का उदाहरण है कि उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने एक भूल करी, और क्या थी वो, कि वो जब शिकार पर निकले थे और वो श्रमिक ऋषि की कुटिया में गए, और श्रमिक ऋषि के गले में वो मरा हुआ सांप एक हार के रूप में पहना दिया, क्योंकि श्रमिक ऋषि वो अपने ध्यान मग्न थे और उन्होंने परीक्षित महाराज का स्वागत नहीं कर पाए, वो तो अपमान ले लिया और मरा हुआ सांप डाल दिया। उस एक भूल के वजह से परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला, परंतु अंततः श्रीमद् भागवत उन्हें सुनने मिली, जिसके वजह से हम सबको श्रीमद् भागवत मिली, परंतु फिर भी परीक्षित महाराज ने अपनी उस भूल पर सफाई पेश नहीं की। तो क्या हुआ, मैं राजा हूं, मैंने अगर एक भूल कर भी दी तो कोई इतना बड़ा श्राप मुझे कैसे दे सकता है, नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार किया। एक और राजा जिसके पीछे ये हमारा देश भारत देश कहा जाता है, सो भरत महाराज, वो निकले अपनी पूरी राज्य की जिम्मेदारी सौंप कर, जब वो वैराग्य की ओर निकले वन में और अपने साधना में लगे हुए, भाव स्तर तक पहुंच गए और एक हिरण को देखकर उनके अंदर इतनी करुणा आई कि अपनी साधना छोड़ दी, दिन रात केवल उस हिरण को संभालते हुए वो अगले जन्म में हिरण बन गए। तो देखो हमारे शास्त्रों में ये जो हिरण हैं इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है। देवराज इंद्र, हम लोग गोवर्धन लीला उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो प्रसिद्ध गोवर्धन लीला है, तो देवराज इंद्र का बीच बीच में बहुत ये पद अभिमान होता रहता है, जिसके वजह से वो ऐसी गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और एक नहीं दो नहीं कितनी बार गलतियां करते हैं उस पद अभिमान के वजह से, उनकी आसक्ति के वजह से, और उन्हें भगवान और भगवान के प्रतिनिधि ठीक भी करते रहते हैं परंतु फिर भी वो बाज नहीं आते। फिर ब्रह्मा जी वो विमोहित हुए। अब ठीक है, देवराज इंद्र उनके विषय में समझ सकते हैं कि वो भोग विलास में ज्यादा लिप्त रहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी जो कि पूरी बुद्धि के बने हुए, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर कोई हार्ड मांस का, ये जो हमारा पार्थिव शरीर है इस प्रकार का नहीं है, उनका बुद्धि से बना हुआ शरीर, ही जस्ट मेड ऑफ इंटेलिजेंस। परंतु उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल सखाओं का जूठा खाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी शॉर्ट सर्किट हो गया, उनका इंटेलिजेंस शॉर्ट सर्किट हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, कैसे ये छोटा सा बालक भगवान हो सकता है। और फिर उन्होंने परीक्षा भगवान की करनी चाहिए, ग्वाल सखाओं की परीक्षा करनी चाहिए। बहुत सुंदर वर्णन है कि जब वो समझे कि अरे मैंने तो अग्नि से खिलवाड़ किया है और अपनी गलती, उसका एहसास उनको जब हुआ और फिर जब वो अपने लोक लौट रहे थे अपनी गलती का एहसास करते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी एक अलग लीला करी। जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल सखाओं को चुरा लिया था और भगवान सब ग्वाल सखा बने और बछड़े गाय बने, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जाने से पहले भगवान ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पहुंचने से पहले भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहां पर सारे पहरेदारों को कह दिया कि एक डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहा है और वो ब्रह्मलोक में आने का प्रयास करेगा, घुसने मत देना उसे। अच्छा, ऐसा भी होता है आजकल, डुप्लीकेट ब्रह्मा भी घूम रहे हैं। हाँ, तो भगवान ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अब असली ब्रह्मा जी आए पीछे पीछे, पूरा मुंह लटकाए हुए परेशान से आ रहे हैं पहरेदार, कहां घुस रहे हो? ब्रह्मा जी कौन, तुम मुझे पूछ रहे हो? तुमको सलामी देनी चाहिए, सैल्यूट वल्यूट कुछ नहीं। हाँ, हमें पता है तुम डुप्लीकेट हो, चलो असली अंदर बैठे हुए हैं। और जब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि देखो भगवान ने उन्हें ठीक करने के लिए उनके सिंहासन तक पहुंच गए, जाके बैठ गए और भगवान बैठे मुस्कुरा रहे थे कि तुम सोच रहे थे कि तुम मुझसे खेल करोगे, अब जब तक तुम्हारे होश ठिकाने पूर्ण प्रकार से नहीं आते तुम्हें अंदर अनुमति नहीं मिलेगी। फिर फाइनली भगवान ने पहरेदारों को कहा कि नहीं नहीं, यही असली ब्रह्मा जी हैं, आने दो इनको। अब ये समझ गए, लेसन सीख गए। ब्रह्मा जी एक बार द्वारका गए भगवान से मिलने के लिए। बहुत सुना था उन्होंने कि द्वारकाधीश भगवान, उन्होंने 16108 रानियों के साथ शादी करी है और 16108 महल बनाए हैं, निर्माण किया है उनका। तो ब्रह्मा जी मिलने गए और कि भाई मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं पूरी सृष्टि में, कि फर्स्ट आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर उनका, जो पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है उनके अंडर। तो भगवान समझ गए इनके अंदर फिर से अभिमान हो गया है। तो भगवान ने फिर पहरेदारों को कहा, द्वारका के उनके महल के बाहर के पहरेदारों को कहा कि ब्रह्मा जी आएंगे, उनको अंदर आने मत देना, बाहर एक बेंच लगा दो, बिठाओ वहां पर। बेंच पर बिठा दिया, बेंच पर बैठे ब्रह्मा जी, अंदर नहीं अनुमति। क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं नहीं, बिजी हैं, पहरेदारों ने कहा बिजी हैं अभी। अच्छा, बिजी हैं, बैठे रहे ब्रह्मा जी। फिर पहरेदार आए, वो भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा जी हैं आप, कौन से ब्रह्मा जी, एक ही तो है ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा जी मतलब क्या होता है। तो फिर उन्होंने कहा जो चतुर्मुख चार मुख वाले बोलो। गए अंदर गए जब, तो थोड़े से गुस्से में थे कि ये ऐसे कैसा प्रश्न पूछा। जब गए अंदर तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी वहां पर मीटिंग में बैठे थे भगवान के साथ, जिनके 8 सर हैं 16 सर हैं 108 सर हैं 164 सर हैं 16,000 सर हैं 1,00,000 सर हैं। ऐसे 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 ब्रह्मा जी मीटिंग में बैठे हुए हैं और भगवान बहुत इंटेंस डिस्कशन उनके साथ कर रहे हैं, बहुत मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है। और ये चार मुंह वाले ब्रह्मा जी जिनको लग रहा था कि यही एक ब्रह्मा जी हैं सबसे यूनिक जिनके 4 सर हैं, यहां पर इतने सारे सर वाले ब्रह्मा जी को देखा और इंटेंस मीटिंग चल रही है। और फिर भगवान ने मुस्कुराए और उनको देखते हुए कहा अरे 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 हमारे वो सबसे छोटे वाले ब्रह्मा जी भी आए। और फिर सभी बाकी के ब्रह्मा वो अपने सारे सर पीछे कर ये 4 सर वाले ब्रह्मा जी को देखा ऊपर से नीचे तक। अच्छा छोटू आ जाओ। तो ये किस्सा एक और ब्रह्मा जी के साथ हुआ। फिर भगवान शिव जी जो प्रसिद्ध लीला मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति से भगवान शिव जी, इसलिए जब भगवान शिव जी गए मोहिनी मूर्ति अर्थात भगवान विष्णु के पास, क्योंकि वो मिस कर गए थे इस अवतार को देख नहीं पाए वो, और बाकी सारे देवता उन्होंने तो मोहिनी मूर्ति का रूप देखा और वो लोग जाके शिव जी को चिढ़ा रहे थे आपने नहीं देखा, मिस कर दिया आप, मिस किया आप। तो शिव जी उनको बहुत ये लग रहा है सारे अवतार भगवान के मैंने देखे हैं और मेरी उनके अंदर सब लीलाएं हुई है, ये ऐसा अद्भुत अवतार, ये सारे कल के ये देवी देवता चिढ़ा चिढ़ा के जा रहे हैं मुझे। तो शिव जी गए मुझे भी देखना है। तो भगवान विष्णु वो मुस्कुराने लगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रहस्य भाव गंभीरम भगवान विष्णु के विषय में, कि वो गंभीर भी थे और हंस भी रहे थे। प्रहस्य भाव गंभीरम, वो हंस इसलिए रहे थे भगवान विष्णु शिव जी को देखते हुए, शिव जी आप भी हैं अच्छी खासी, पार्वती जी आपकी पत्नी है, गणु गणेश जी हैं, कहाँ पछड़ों में पड़ रहे हो तुम, तो इसलिए प्रहस्य हंसने, परंतु गंभीर, गंभीरता उनके अंदर इसलिए दिख रही थी कि भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि शिव जी को मोहित करना है तो वो जो मैंने देवताओं और असुरों के लिए मोहिनी मूर्ति का रूप लिया था उससे काम नहीं होगा, वो तो बेसिक बेसिक वर्जन था मेरे मोहिनी मूर्ति का, शिवजी को मोहित करने के लिए एडवांस्ड वर्जन दिखाना होगा, क्योंकि ये कोई साधारण देवता नहीं है, महादेव हैं ये। इसलिए गंभीर वो हुए और उन्होंने जब वो अपना होता ना फुल्ली लोडेड व्हीकल होता है, एक बेसिक मॉडल होता है किसी कार का, उसके अंदर सारे फीचर्स नहीं होते, तो जो देवताओं को और असुरों को मोहिनी मूर्ति ने अपना रूप दिखाया था वो बेसिक रूप था, उसी में तो वो लोग फिदा हो गए थे, परंतु शिवजी के लिए उन्होंने फुल्ली लोडेड वर्जन दिखाया अपना। और फिर शिवजी जो और पार्वती के सामने हो रहा है सब, पार्वती भी उधर हैं, पार्वती के सामने शिवजी मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं और मोहिनी मूर्ति भी जानबूझ के शिवजी के जो डिसाइपल्स हैं सब लोग ध्यानस्थ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके सामने से मोहिनी मूर्ति भाग रही है और पीछे शिवजी भाग रहे हैं और ये लोग सब ध्यानस्थ देख रहे हैं गुरुदेव। हालांकि भगवान शिवजी का स्तर ऐसा है कि इस पूरी लीला के पश्चात भगवान शिवजी ने जो गुणगान किया भगवान विष्णु का, ऐसा नहीं कि वो भगवान विष्णु को कहने लगे कि मैंने खाली आपको वो एक झलक दिखाने के लिए कहा था, आपको ये सब करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कोई केस नहीं किया भगवान के ऊपर, उल्टा वो इतने प्रसन्न हुए कि आप ही हो और आपकी ही माया है और ये सिद्ध हो गया है। शिव जी कहते हैं मेरे जितने भक्त हैं वो देखो कि भगवान कौन है, तुम मुझे भगवान मानते हो, ये है मेरे भगवान। इस प्रकार से उनका भाव था। इसलिए जब कोई मुझे पूछता है कि भगवान शिव जी की कौन सी लीला है जिससे आप उनका उनके प्रति जो आदर है आपका बढ़ता है, तो ये लीला है कि जिसके अंदर अल्टीमेट ह्यूमिलिटी शिव जी की दिखने में आई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देवराज इंद्र का। अब देखो, हमने इस लीला की चर्चा भी की है कि सत्यभामा को पारिजात पुष्प चाहिए था, भगवान ने कह दिया कि पुष्प क्या, मैं पेड़ लेकर आ जाता हूं। एक पारिजात का पेड़, सोचो पूरी सृष्टि जिनकी है, एक पारिजात का पेड़ देवराज इंद्र के इंद्रलोक के उनके आंगन से ले जा रहे हैं। और इंद्र कहते हैं कैसे ले जा रहे, किसको कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कह रहे हैं कि कैसे ले जा सकते हो, और लड़ाई करने लगे किसके लिए, एक पेड़ के लिए, है ना। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी, हम लोग सोचते हैं यहां पर तो हम सब कुछ मदन गोपाल जी को ऑफर करते हैं, हालांकि वो कुछ मांगते नहीं, इसलिए हम लोग केवल आम वगैरह एक पेटी ऑफर करते रहते हैं। कल को वो आ जाए, बोले धर्म बंगला दो तुम्हारा, हम भी देवराज इंद्र जैसे आ जाए, कैसे बंगला है, है ना, इतना बड़ा मंदिर आपका, रहो ना उधर बंगला मांग रहे। तो भगवान भी जानते हैं कि कौन सी नजदबानी है देवराज इंद्र की, पारिजात वहां से निकालना है। परंतु फिर भी एक हम लोग भी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं जब ऐसी लीलाएं, इसलिए याद रखना क्या, मानवीय स्तर और दैवीय स्तर, वो भूलना मत। फिर ये कथा है जय विजय और कुमारों के बीच में जो झड़प हुई। ये चतुष कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये वैकुंठ में अंदर जाना चाहते थे, जय विजय ने रोक दिया, नहीं जा सकते, कौन, छोटे छोटे बच्चे, एक तो कपड़े भी नहीं पहने, कपड़े पहन के आओ पहले, जाओ नैपी पहन के आओ, भेज दिया। वो अब वो नहीं जानते कि ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, बड़े चतुष मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। लेकिन उनके बीच में वहां पर झड़प हुई। तो ये एक और लीला है, दक्ष प्रजापति और शिवजी। अब देखो कौन है, एक गुणावतार शिवजी हैं और दक्ष प्रजापति उनके ससुर हैं। तो देखो, एक तो ससुर क्या उनका एक प्रजापति है वो, हाँ डायरेक्टली वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और शिवजी जो उनके दामाद हैं, इन दोनों के बीच में जो दक्ष यज्ञ है, कभी उसकी चर्चा हम करेंगे, अभी तक किए नहीं उसकी, तो उसकी चर्चा कभी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है दक्ष यज्ञ, अभी केवल आपको ट्रेलर दिया है थोड़ा सा। फिर विश्वामित्र मुनि, ये तो प्रसिद्ध लीला है, विश्वामित्र मुनि और मेनका, इसके विषय में तो हम ज्यादा क्या कहें, आप लोग तो जानते ही हैं। फिर सौभरी मुनि, ये एक ऐसे मुनि हुए जो कि जमुना के नीचे जाकर वो तपस्या कर रहे थे, श्वास रोकी हुई थी, परंतु फिर उनके मन में जब काम वासना जागृत हुई तो बाहर निकलकर एक नहीं दो नहीं मंधाता राजा की 50 राजकुमारियों के साथ उन्होंने विवाह किया। फिर महाराज द्रुपद एवं द्रोणाचार्य, अब देखो ये दोनों कौन हैं, कि द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु, द्रुपद अर्जुन के ससुर, एक गुरु और एक ससुर, इन दोनों में दुश्मनी, और अर्जुन इन दोनों को संतुष्ट करने में माहिर थे, द्रुपद को भी और द्रोणाचार्य को भी। स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र सांबा, उन्होंने एक गलती करी बहुत बड़ी। एक बार नारद मुनि और अन्य ऋषियों की खिल्ली उड़ाते हुए सांबा ने अपने पेट में तकिया बांध लिया और स्त्री का परिवेश धारण कर कर पूछता है कि बताओ लड़का हो गया लड़की हो गई। अब किसको पूछ रहा था वो, जो त्रिकालदर्शी नारद मुनि जैसे ऋषि मुनि, तो समझ गए कि ये है कौन और ये क्या करना चाह रहा है, हमसे मजाक कर रहा है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, ये तुम्हारे पेट से एक ऐसा लोहे का टुकड़ा जम लेगा जो तुम्हारे पूरे यादव वंश का नाश करेगा। तो ये गलती उनसे हुई। इसलिए फिर से ये सारे उदाहरण पढ़ने के समझने के बाद ये जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम अपराध की दृष्टि में रहेंगे। नॉट टू कमिट अपराध एंड ऑल्सो लर्निंग ह्यूमन लेसन्स। अब ह्यूमन लेसन्स हम क्या सीखते हैं? रिजल्ट ऑफ इन अटेंशन, कि यदि ऐसे ऐसे महान दिग्गज जब वो असावधान रहे तो असावधानी के वजह से उनके जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ। तो एक छोटा सा वीडियो है, रिजल्ट ऑफ इन अटेंशन। इंडिया में क्रिकेट कौन नहीं जानता है, क्रिकेट के रूल्स कौन नहीं जानता है, क्रिकेट में अलग अलग तरीके से आउट होते हैं लोग, है ना। इसलिए कई बार आप देखो जो बहुत चौके छक्के मारता रहता है, मान लो कि उसने एक ओवर में बस चौके छक्के ही मारे, चौका फिर छक्का, चौका फिर छक्का, पूरा स्टेडियम वाह 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 कर रहा है, तब होता क्या है कि सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसा और कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे लगता है कि बस अब हर बॉल में छक्का ही मारूंगा, और उस समय वो क्लीन बोल्ड होता है। अक्सर देखा ना, जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है उस समय वो क्लीन बोल्ड होता है। इसी प्रकार से क्रिकेट में एक तरीका है आउट होने का, रन आउट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये प्लेयर रन आउट हुआ है।
Here we go, Sanju Samson, he's got the big gloves on, misses, right, where's the batsman, halfway through, Faulkner, what does he do, misses, now what does he do, what's the batsman doing, and he's out, that is one.
पार्क में एक छोटा लड़का, वो बेंच पे बैठे चॉकलेट खा रहा था, तो एक आंटी आके बैठी उसके बगल में, और ऐसे छोटा बच्चा है, देख रही है उसको, वो चॉकलेट खा रहा है, एक चॉकलेट खाई उसने, दूसरी चॉकलेट खाई, तीसरी चॉकलेट खाई, वो आंटी बोली, बेटा इतनी चॉकलेट नहीं खाते। वो क्यों? नहीं नहीं तुम्हारे वो दांत खराब हो जाएंगे, इतनी चॉकलेट नहीं खाते। नहीं खाओ चॉकलेट तो क्या होगा, लंबी उम्र मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी उम्र लंबी होगी, आंटी ने कहा। वो लड़का कहता है, मेरी नानी माँ वो 99 साल तक जी, 99 साल। तो आंटी कहती, जरूर उसने चॉकलेट नहीं खाई होगी। ये लड़का कहता, नहीं वो अपने काम से काम रखती थी। तो ये वीडियो वही था। अच्छा, हमने ये जो बहुत बार हमारे उपनिषद का उदाहरण सुना है ह्यूमन चैरियट, कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर है ये इस रथ के समान है, और इस रथ के ये जो पांच घोड़े हैं ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक जिह्वा त्वचा इत्यादि, ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय, ये पांच घोड़े हैं, लगाम मन। लगाम की तुलना मन से की गई है, और जो सारथी है उसकी तुलना बुद्धि से की गई है, और जो इस पे रथी है आरूढ़ वो है आत्मा हमारा। तो ये अक्सर हमने उदाहरण सुना है जिसके अंदर जिम्मेदारी इस रथ को सही दिशा में ले जाने की किसकी है? सारथी की। सारथी अर्थात बुद्धि। तो बुद्धि की जिम्मेदारी है कि मन की लगाम को ठीक से कंट्रोल में रखें, और यदि मन के लगाम को वो सारथी ठीक से कंट्रोल में रखता है तो जो घोड़े हैं वो कंट्रोल में। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि घोड़े कहीं ना कहीं कभी ना कभी यहां वहां वो अपना मुंह मारते हैं, और सारथी की जिम्मेदारी होती है कि वो एक एक घोड़े को अपने नियंत्रण में रखे। ये उदाहरण है। अब हमारे साथ भी क्या होता है कि जो हमारा मन है ये लगाम है, और ये हमारी इंद्रियों को छूट देने लगता है कि चलो तू यहां पे जा सकता, तू यहां ये घोड़ा तू यहां पे भी जा सकता, तू यहां पे भी जा सकता। इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि स्पेशली जब आप साधना में लगते हो, साधना अर्थात इस मन को कंट्रोल करना, इंद्रिय से ज्यादा मन को कंट्रोल करना साधना का अर्थ। तो जब हम साधना में लगते हैं, जैसे कि इस समय साधना हो रही ना, मैं जो कह रहा हूं आप लोग उसको सुनने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान लगाकर सुनने की समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो मन है आपके अंदर ये अवश्य ही जब से प्रवचन शुरू हुआ है ये बीच बीच में आपको टोक रहा होगा कि बस हो गया, वही चीज बोलता है ये बार बार, और आपकी बुद्धि वो भी हल्की आवाज में, हल्की आवाज में बुद्धि होती है वो मन को कहती है अरे इतना भी मत चिल्ला, क्यों नहीं चिल्ला, अरे धीरे रिलैक्स जेनिफर रिलैक्स। तो ये जो हर समय डायलॉग चलता है ना एक साधक के मन और बुद्धि का डायलॉग, कैसा डायलॉग है ये? जैसे मान लो कि बुद्धि ने डिसाइड किया कि कल से मैं रोज मंगल आरती जाऊंगा, बुद्धि ने डिसाइड किया कि कल से मैं रोज मंगल, और मंगल आरती बाय द वे जिसको पता नहीं 5 बजे होती है, कई नए लोग सोच रहे होंगे अच्छा आरती में जा रहा है, नहीं मंगल आरती में 5 बजे सुबह 5 बजे वाली मंगल आरती। तो बुद्धि ने डिसाइड किया कि मैं कल से रोज 5 बजे की मंगल आरती में जाऊंगा इस्कॉन के मंदिर, मन ने सुन लिया। तो मन, अब देखो मन कैसे बोलता है, तो जाना तू जाना तू जा, कौन रोकता है, मुझको क्यों उठा रहा है। तो अब दोनों के डायलॉग कैसे चालू होते हैं, हा? आप लोग अभी इसको हंस रहे होंगे लेकिन ये हम सबके अंदर चलता है। तो किसी ने डिसाइड किया नहीं नहीं मेरे को कल से जाना है, तो मन कहता है कल से क्यों क्यों, कल क्या है, नहीं मैंने डिसाइड किया है कल, अच्छा कल से जाएगा, क्यों तू दीक्षित है क्या, इतने दीक्षित डिवोटीज रहते हैं इधर वृंदावन कॉलोनी में, कोई आते हैं क्या, मस्त ठोरते रहते हैं सुबह वो लोग, पहले उनको उठा के लेके आ। तो बुद्धि कहती है वो जाने, मैं हूं। तो मन कहता है तू कोई 30 मार खा नहीं है, तू अकेला अगर मंगल आरती जाने लगेगा ना तेरे को अहंकार हो जाएगा, अब देखो फिलॉसफी, मन जो है फिलॉसफी भी यूज कर रहा है, तेरे को अहंकार हो जाए। तो बुद्धि बोलती है वो मेरा प्रॉब्लम है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं डील करूंगा, जो भी वो अहंकार होगा, अभिमान होगा, जो भी होगा मैं डील करूंगा, मुझे तो कल से मंगल आरती जाना। अरे लेकिन इतना लेट सो रहा है तू, इतना लेट होता है तू, कितना काम करता है, घर परिवार संभालना है, वो तो ब्रह्मचारी है, उनको तो कोई काम धंधा नहीं होता है। तू प्रैक्टिकल है, तू काम करता है, तू 8 घंटे मेहनत कर रहा है, तेरे बीवी है, तेरे बच्चे हैं, ऐसे नहीं जा सकता तू, इतना लेट होता है तेरे को। तो बुद्धि बोलती है तो लेट तू ही कराता है, टीवी दिखाता है रात को लेट। तो ऐसे ही मन और बुद्धि का डायलॉग चल रहा है। फाइनली होता क्या है कि जो शक्तिशाली होगा, फाइनली मन अगर बुद्धि को बोल दिया, चाहे जो भी हो जाए, तू कितने भी आर्ग्यूमेंट दे कि तेरे को एडवांसमेंट करना है भक्ति के अंदर, तेरे को प्रगति करनी है और इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, मैं तुझे उठने ही नहीं दूंगा। और होता क्या है, सुबह जब अलार्म बजता है तो मन बुद्धि को बोलता है, ये अलार्म की आवाज अच्छी नहीं लग रही है ना, नहीं लग रही है ना, है ना, नींद कैसे, तकिया कैसा लग रहा है, बिस्तर कैसा लग रहा है, चल करवट बदल उस तरफ से, अलार्म मैं बंद करता हूं, जा उस तरफ से। तो ये हमारे मन में द्वंद्व चलता रहता है। इसलिए आप देखो कि जानवरों में और हम मनुष्यों में जब हम मन बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं या एक निर्णायक हम योनि है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो जानवरों के अंदर जो शक्ति भगवान ने दी वो क्या शक्ति है, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, वो हम उसकी चर्चा करेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट का अर्थ क्या होता है। और हम मनुष्यों के अंदर 3 चीजें दी हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी, उसके बाद में प्रिफरेंसेस और फिर फाइनली चॉइसेस। तो यदि हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन को लें, जो कि पशुवत स्तर पर है, पशु के स्तर पर है, तो डिस्क्रिमिनेशन किस बात का होता है, उनके अंदर प्लेजर और पेन, कि क्या उनके लिए कोई सुखदायक वस्तु है और कौन सी दुखदायक। अब हम मनुष्य यदि हमारा जीवन केवल इस पर आधारित रखें कि कहां पर सुख है वहां जाना और कहां पर दुख है वहां न जाना, तो ये पशुवत जीवन है केवल। जैसे कि वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर, क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि चूहे को पिंजड़े में रखा, एक तरफ करंट एक तरफ पूड़ी, चूहों को पूड़ी अच्छी लगती खाने में, तो एक तरफ पूड़ी एक तरफ करंट, तो चूहा जब पहली दफा करंट की ओर गया तो करंट जब उसको लगा तो लेफ्ट साइड में करंट, उसको प्रोग्राम किया उसने कि लेफ्ट साइड में नहीं जाना चाहिए, उधर करंट लगता है, तो वो राइट साइड में गया। अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, पलट दिया, राइट साइड में करंट कर दिया, लेफ्ट साइड में पूड़ी रख दी। तो ये चूहा जब भी ये वैज्ञानिक इसको चेंज कर देता, चूहा कंफ्यूज हो रहा था, पूड़ी करंट, करंट पूड़ी करंट, करंट पूड़ी, कि जाऊं तो जाऊं कहां, कभी जाता हूं तो करंट लगता है, कभी जाता हूं उधर तो पूड़ी मिलती है। और उसी दौरान उस वैज्ञानिक ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया, ये चूहा इतना उस कश्मकश में मशगूल था कि यहां पर जाऊं यहां पर जाऊं, यहां पर करंट है यहां पर पूड़ी है, यहां पर होता है कभी करंट यहां पर कभी पूड़ी होती है, अरे तेरा दरवाजा खुल गया पिंजड़े का, उसको उसका भान ही नहीं है। तो कई बार कई मनुष्य जो है वो इसी प्रकार का जीवन जीते हैं इस भौतिक संसार में, कि कहां पर करंट मिलेगा वहां से दूर भागते रहो, दूर भागते रहो, इस्कॉन टेम्पल से करंट मिलता है, दूर भागो, दूर भागो, और बाकी खाऊ गली में पूड़ी मिलती, उधर जाओ ऐसे करते, फिर इधर करंट उधर, फिर बाद में पता चलता है इधर भी पूड़ी मिलती। पहले करंट देते हैं फिर पूड़ी देते हैं इन लोग। तो केवल इस स्तर पर अगर हम जीवन जी रहे हैं तो वो है पशुवत जीवन। फिर प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस हमारे किस प्रकार के होते हैं? पसंद नापसंद। अब देखो ये जो पसंद नापसंद का जीवन है ये केवल हम मनुष्यों का है ना। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद माणिकचंद गुट का पसंद। अब पशु जो हैं वो लोग पसंद नापसंद में इतना वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब कुत्तों को रोटी डालो तो कुत्तों को अगर पूछो कि क्या खाओगे, पराठा या सादी पोड़ी या भाकरी, अरे वो तो बस देख रहा है जो भी डाल दे। लेकिन हम मनुष्य की प्रेफरेंसेस, टूथपेस्ट भी होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में जीरा है, क्या हींग है, गरम मसाला है, अजवाइन है, दूधी है, भोपला है, क्या है टूथपेस्ट के अंदर, है क्या टूथपेस्ट के अंदर इतनी वैरायटी। मैं बता रहा था अभी बंबई में प्रवचन में, मेरा फ्रेंड ना वो हम लोग बड़े 5-स्टार होटल में हमारी एक पार्टी थी तो रुके थे वहां पे 2 दिन हम लोग ख्यात रीजेंसी में। तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वो गया, होता है ना ब्रेकफास्ट तो फ्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उसने कॉफी मांगी। तो जो वेटर था उसने पूछा, सर कौन सी कॉफी लेंगे, लाइट, स्ट्रांग, मीडियम, कैपिचुनो, मोका, लाते, एस्प्रेसो। ये मेरे को पूछता है ये एक ही आइटम के नाम है, बाय द वे कॉफी को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, ये अलग अलग तरीके हैं कॉफी के, कॉफी के अवतार हैं 10 अवतार, मोका, लाटे, एस्प्रेसो, लाइट, मीडियम, स्ट्रांग। तो वो इतना कंफ्यूज हो गया, बोला अरे वो मीठी वाली दूध डाल के वो दे दे यार। तो हमारे उसके अंदर कितने प्रेफरेंसेस होते हैं कि ये वो, जैसे आप देखो कि ये जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं ये सारे मॉल्स के अंदर जो इतनी वैरायटी है, कपड़ों के अंदर कितनी वैरायटी है, जैसे हमने कहा टूथपेस्ट के अंदर इतनी वैरायटी है, वेस्ट में तो दही के अंदर इतनी वैरायटी होती, दूध के अंदर इतनी वैरायटी है, सब कुछ क्यों, हमारी पसंद और नापसंद। बट फाइनली जो हाईएस्ट लेवल ह्यूमन बींग्स का है वो है चॉइस, और चॉइस का शुरुआत होता है राइट और रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है। तो देखो प्लेजर और पेन लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर है सही और गलत। तो यदि हमने जो अभी माइंड और इंटेलिजेंस की चर्चा करी तो आप देखो माइंड और इंटेलिजेंस में माइंड प्रेफरेंसेस वो दिखाता है हमें और इंटेलिजेंस वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमें बताता है। तो प्रेफरेंसेस यदि वो जीवन हम जीते हैं माइंड के लाइन का तो हमें केवल सुख की खोज, बस उसके पीछे हमारा जीवन रहता है। परंतु इंटेलिजेंस जब हमें डिस्क्रिमिनेट करना सिखाता है तो हम परिणाम के विषय में सोचते हैं कि मैं सही करूंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, गलत करूंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। इसलिए जब हम चॉइस की बात करते हैं तो उसमें ये दो चीजें, ये मतलब एक मनुष्य जीवन की प्रगति का मान लीजिए उच्चतर स्तर है। When he starts liking the right thing and disliking the wrong thing, कई बार क्या होता है हमको पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है but we still like the wrong thing and we dislike the right thing. But the moment we start liking the right thing and disliking the wrong thing, then we are really living as a human being. और इसलिए एक है moral dilemma और एक है ethical dilemma. अब ये जो सबसे ऊंचा स्तर है मनुष्य की बुद्धि का, इसमें अंतर क्या है? मॉरल डिलेमा मतलब कि सही और गलत, मतलब गीतामृत के लिए आऊं या 16 वाइंस जाऊं, इजी है। परंतु एथिकल डिलेमा का अर्थ क्या होता है कि दो सही चीजों में चयन करना, कि चैंटिंग करूं या भागवत का अध्ययन करूं, जब ये दोनों के बीच में हमारे प्रश्न उठते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जो लेवल है इंटेलिजेंस का वो बहुत ऊपर तक चला गया। केवल 16 वाइंस और गीतामृत में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो अभी तक दिल्ली बहुत दूर है। सो फाइव फैक्टर्स दैट डिटरमाइन अवर चॉइसेस: पास्ट लाइफ इंप्रेशंस, फैमिली अपब्रिंगिंग, एसोसिएशन इन दिस लाइफ, फ्री विल एंड कृष्णाज ग्रेस। तो हमको लगता होगा कि मैंने कोई चयन किया, मैंने कुछ चॉइस अपनी व्यक्त की, इसके पीछे ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार क्या हैं उस पर निर्धारित करता है, इस जन्म में परवरिश किस प्रकार की हमारी हुई है, फिर हमारा संग हमने इस जन्म में अब तक का किस प्रकार का संग रखा है, फिर उसके ऊपर हमारा फ्री विल और भगवत कृपा। इसलिए यहां पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शारीरिक स्तर पर है, प्रेफरेंसेस जो है वो मेंटल स्तर पर है, और चॉइसेस जो है वो हमारे जमीर, जिसको बोलते हैं ईमान, कॉन्शियंस, उसके स्तर पर होता है। इसलिए द थ्री सीज ऑफ लाइफ: चॉइसेस, चांसेस एंड चेंजेस। यू मस्ट मेक अ चॉइस टू टेक अ चांस और योर लाइफ विल नेवर चेंज। तो जो हमने उदाहरण लिया कि हमारी बुद्धि को हमें कैसे मन पर उस पर नियंत्रण लाना है, तो ये जो दो चीजें हैं, एक है कन्वीनियंस ड्रिवन लाइफ और एक है कॉन्शियंस ड्रिवन लाइफ। कन्वीनियंस ड्रिवन लाइफ क्या होती है कि जो सहूलियत, आरामदायक जीवन है, बस वो जीते रहो। जैसे कि पंछी जो घोंसले में रहते हैं, यदि जीवन भर घोंसले में रहें तो कभी उड़ नहीं पाएंगे, तो घोंसला जो है उनके लिए कन्वीनियंस है, लेकिन उनको यदि उड़ान भरनी है तो उन्हें आकाश की ओर अपनी नजर घुमाकर उड़ना होगा, देन दैट विल बी कॉल्ड कॉन्शियस ड्रिवन लाइफ। सो मेकिंग डिसीजंस राइट वर्सेस मेकिंग राइट डिसीजंस। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होगा कि कुछ परिस्थितियों के वजह से हमारे ऐसे डिसीजंस हमको लेने पड़ेंगे जो हो सकता है कि इस समय वो अनुकूल न हो, परंतु हम उसे हमारे कॉन्शियंस, हमारे ईमान से उसको सही कर सकते हैं। सो ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, और कंप्यूटर को कोई यूज करने वाला यूजर होता है। सो हार्डवेयर इज लाइक द फिजिकल बॉडी, ये जो हमारा स्थूल शरीर है। मन क्या है? सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉफ्टवेयर। इसलिए वायरस कहां घुसता है? सॉफ्टवेयर में घुसता है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में लगाना पड़ता है। इसलिए कई बार कंप्यूटर नया होगा, हार्डवेयर एकदम नया होगा, मशीन पूरी नहीं है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में वायरस घुस गया, इसलिए कईयों के शरीर एकदम सुदृढ़, स्वस्थ और अच्छे दिखने वाले होंगे, परंतु अंदर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, मतलब माइंड करप्ट हो गया। तो इसलिए मैं आज फिर से आपको एक गाइडेड मेडिटेशन टूर पर ले जाने वाला। याद है आपको, एक बार हमने संडे क्लास में आपको ले गए थे गाइडेड मेडिटेशन टूर पर। आप लोग तैयार है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, वो जो हमने उस टाइम किया था वो आपको हम वृंदावन ले गए थे। तो आज मैं आपको एक ऐसे टूर पर ले जाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कैसे जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है और जो आपका सॉफ्टवेयर है और फिर यूजर कौन है, इसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे होपफुली इस सेशन के पश्चात। तो जैसे हमने पिछली दफा किया था, अभी हम ये सारी बत्तियां ये धीमी करने वाले हैं और एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले होने वाला है। आपको सॉफ्ट म्यूजिक का केवल सहारा लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मेरे मुख से वाक्य निकलेंगे आपको मेरी आवाज पर ध्यान देना है, और जो मेरी आवाज के जो शब्द और वाक्य होंगे उसका अर्थ समझने पर उसकी कल्पना करनी है आपको, उन वाक्यों और उन शब्दों के अर्थ के ऊपर कल्पना करनी है, और आपको आपके मन के रथ पर बैठकर मैं जहां आपको ले जाऊं वहां आपको जाना। तैयार है? सब लोग सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद कीजिए और आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं उस चेयर पर आपको आपके शरीर को जितना हल्का हो सके उतना हल्का बनाना है। और ध्यान रखिए मेरी आवाज वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहां रहते हैं उसके विषय में नहीं सोचना है, आप क्या करते हैं उसके विषय में नहीं सोचना है, आपका नाम क्या है उसके विषय में नहीं सोचना है। इस समय केवल जो मेरी आवाज है वही एकमेव आपके ध्यान का केंद्र होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अपने आप को आपकी कुर्सी के ऊपर हल्के से हल्का कीजिए, इतना हल्का कीजिए कि धीरे धीरे आपको वो कुर्सी भी महसूस न हो, एज इफ यू आर नो मोर सिटिंग ऑन दैट चेयर। फोकस on my sound, totally unaware of what is happening around you, don't focus on any other sound, just focus on what I am about to say. केवल मेरी आवाज पर ध्यान देना है आपको। धीरे धीरे आपके शरीर को हल्का करते हुए अब आप याद कीजिए जब आप स्कूल में थे और स्कूल में नवीं कक्षा में जब आप थे तो कौन सी वो टीचर थी या कौन से वो टीचर थे जो आपको सबसे अच्छे लगते थे, या कोई एक टीचर जो आपको सबसे अच्छा लगता था या लगती थी, जिसका स्वभाव जिसका व्यवहार आपको बहुत पसंद आया था, उस पर आप ध्यान कीजिए। अब वो कौन सा टीचर या टीचर थी जो आपको पसंद नहीं, जिसका व्यवहार जिसका बर्ताव आपको पसंद नहीं था, ऐसा भी कोई टीचर था या ऐसे भी कोई टीचर थी? अब आप याद कीजिए कि पिछली दफा आप कौन सी शादी में गए थे। क्या वो शादी आपके किसी बहुत निकटतम रिश्तेदार की थी? कहां थी वो शादी? और वर वधु आपको यदि याद है कि क्या कपड़े उन्होंने पहने थे, दिखने में वो अच्छे थे, उस शादी का खाना कैसा था आपको वो याद है? आपको याद है आप क्या कपड़े पहनकर गए थे उस शादी में? क्या उस शादी में आप अपनी स्वेच्छा से गए थे या केवल फॉर्मेलिटी के रूप में गए थे? उस शादी को याद कीजिए। अब आप याद कीजिए कि लास्ट किसी के फ्यूनरल पर कब गए थे आप, किसके फ्यूनरल पर गए थे, किसकी शव यात्रा या अंत्येष्टि क्रिया अटेंड करी थी आपने? जो व्यक्ति मरा था क्या आप उसे अच्छे से जान रहे थे? उस फ्यूनरल को याद कीजिए, उस स्मशान भूमि को याद कीजिए जहां पर सब विलाप कर रहे हैं, वो शव जल रहा है और आप वो जलते हुए शव को देखकर बहुत फिलोसॉफिकल हो गए थे। आप अपने जीवन के विषय में सोचने लगे थे और आपके अंदर उस समय एक वैराग्य उत्पन्न हुआ था अपने शरीर को लेकर, इस संसार की सच्चाई को लेकर। अब आप याद कीजिए कि पिछली दफा आप अपने परिवार के साथ कौन सी छुट्टी मनाने गए थे, कहां गए थे, क्या भारत में थे या भारत के बाहर कोई छुट्टी मनाने गए थे, कैसी थी वो जगह, कैसा था माहौल? अभी भी आपको वो आपके परिवार के साथ आदान प्रदान उन छुट्टियों के दिनों का याद है? कौन सी कोई अच्छी जगह, वहां की कोई हिल स्टेशन या कोई समंदर का किनारा, कोई नदी का किनारा, कोई ऐसी वस्तु जो अभी तक याद है उस फैमिली हॉलिडे की, उसको याद कीजिए। अब आप याद कीजिए पिछला सिनेमा कौन सा आपने देखा था या नहीं देखा, रईस, दंगल, क्या वो सिनेमा सही में आपको पसंद आया था, उसके गाने या उसकी स्टोरी लाइन क्या आपको उसमें से पसंद आया था? अब आप याद कीजिए पिछली दफा आपने किसी गरीब को मदद की थी कभी, याद कीजिए क्या वो गरीब कोई भिखारी था या कोई अनाथ था, क्या वो ऐसा था जिसको आप जानते थे, क्या उसकी मदद आपने अपने सच्चे दिल से की थी? अब आप याद कीजिए कि हमारे राधा मदन गोपाल मंदिर का पिछला कोई उत्सव जो आपको बहुत पसंद आया था, क्या वो ब्रह्मोत्सव था, हमारे राधा मदन गोपाल जी का जन्मोत्सव 23 मार्च वाला, आपको क्या उसमें पसंद आया था, भगवान का श्रृंगार, पुष्प अभिषेक, आपको गौरांग प्रभु का लेक्चर पसंद आया था, क्या आपको उस दिन का प्रसाद या कीर्तन क्या पसंद आया था? अब धीरे धीरे मेरी आवाज के साथ साथ आपके मनोरथ पर बैठते हुए आप अपने कुर्सी पर ध्यान कीजिए जिस पर आप बैठे हैं। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि आप फिर से गीतामृत के क्लास में हैं, बुधवार का दिन है, आप अपनी कुर्सी पर फिर से आ गए हैं और आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हरि बोल। आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि आपके मन के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया था, मेरी आवाज का, है ना? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको मेरी आवाज पर ध्यान रखते हुए आपकी कल्पना को ले जाना है और कल्पना के रथ पर बैठकर, मन के रथ पर बैठकर आपको जाना है, तो आपने अनुभव किया कि मैंने सबसे पहले आपको आपके स्कूल ले गया, मैं, है ना, नौवीं कक्षा, आप बेंच पे बैठे हुए हैं, आपकी कोई फेवरेट टीचर, उसको पे ध्यान कर रहे हैं आप, है ना, फिर तुरंत उसके बाद मैं आपको एक शादी में ले गया, रिसेंटली जो भी शादी में आप गए होंगे, है ना, तो जब आपको मैं शादी में ले गया, आप स्कूल भूल गए, है ना, पूरा भूल गए कि आप अभी अभी स्कूल में भी जाके आए थे, फिर आप पूरा शादी में चले गए, क्या वर वधू ने कपड़े पहने थे, खाना कैसा था, मैंने कौन से कपड़े पहने थे, शादी में आ गए, उसके बाद तुरंत शादी से मैं आपको उठाकर कहां ले गया, शव यात्रा, स्मशान भूमि ले गया, तो अब आप स्कूल भी भूल गए, शादी भी भूल गए, और कहां पहुंच गए? स्मशान भूमि। और स्मशान भूमि में आपके विचार क्या हो रहे हैं कि ये जीवन नश्वर है। इससे पहले शादी में किस प्रकार के विचार थे? अरे बहुत होप्स है जीवन के, है ना। अब वो भूल गए, अब आप किसी की मैयत में हैं, स्मशान भूमि में, वहां पर पिछला सब कुछ भूल गए। फिर वहां से मैं आपको कहां ले गया? फैमिली हॉलिडे। हो सकता है आप कहीं गए होंगे, विदेश में गए होंगे, कहीं थाईलैंड गए होंगे, स्विट्जरलैंड गए होंगे, लंदन गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, या फिर सापुतारा गए होंगे, लेकिन तुरंत आप स्मशान भूमि से फैमिली पिकनिक में चले गए, वहां पर आपका ध्यान, और पिछला सब कुछ भूल गया, जो मैं अभी अभी आपको 5 मिनट पहले ले गया था, वो सब कुछ भूल गया कि नहीं भूल गया? फिर उसके बाद में मैं आपको ले गया, वो सिनेमा आपने अगर देखा होगा तो वो सिनेमा क्या था, उसकी स्टोरी लाइन क्या थी, उसके पश्चात फेस्टिवल, कि कौन सा फेस्टिवल, या किसी गरीब को आपने कुछ दान दिया, दक्षिणा दी, उसके ऊपर आपको ले गया। सो फाइनली हुआ क्या ये 10 मिनट में? आपके मन में इतनी शक्ति है, आप खुद पहचान सकते हो इन 10 मिनट में, कि आप यदि चाहो तो इन 10 मिनट में 9वीं कक्षा से लेके राधा मदन गोपाल के ब्रह्मोत्सव और उसके बीच में जो कुछ है, वो आपके अंदर शक्ति है, आप डिक्टेट कर सकते हो आपके माइंड को। ये तो मैंने टेक ओवर किया आपके माइंड को और ये माहौल क्रिएट किया, यही माहौल आप हर दिन आपके लिए क्रिएट कर सकते हो। यू कैन बिकम द यूजर ऑफ योर हार्डवेयर एंड ऑफ योर सॉफ्टवेयर। यू कैन डिसाइड व्हाट योर माइंड शुड बी थिंकिंग। ये है हमारे मन की शक्ति, हम सब के अंदर ये शक्ति है, इसलिए हमें इसे कोसते नहीं रहना चाहिए, इस मन को कोसते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी शक्ति है, इसको सही तरीके से डाइवर्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी ये माहौल क्रिएट करके डाइवर्ट करवाया, वैसे ही ये जो पूरा हमारा एक साधक का जीवन है, ये एक साधना का जीवन है, जिसके अंदर हम हमारे माइंड के लिए एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और फिर जो महामंत्र है वो यूजर बन जाता है और वो डायरेक्ट करता है, और जब वो हमें धीरे धीरे डायरेक्ट करता है, तब हमें समझ में आएगा कि किसी और को जरूरत नहीं है हमारे मन पर इन्फ्लुएंस डालने की, हम खुद वो शक्ति रख सकते हैं हमारे मन पर वो इन्फ्लुएंस डालने की। इसलिए कहा जाता है, इफ टैलेंट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड देन कैरेक्टर इज अवर चॉइस। बहुत सी चाबियां होंगी, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला आपको आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि आपका कॉन्शियंस, हमने जो कहा जमीर, आपका ईमान सही है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चाबी मुझे उठानी है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, नेक रस्ते पे हरदम चले हम, भूल कर भी कभी भूल होना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। कुछ